ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से 1,70,00,000 किसानों को लाभ होगा।
100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एनटीपीसी के अधिकारों में वृद्धि करते हुए उसे वर्तमान दिशा निर्देशों से छूट देने को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि अब एनटीपीसी अपनी सहयोगी इकाई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निवेश कर सकेगी। श्री वैष्णव ने बताया कि समिति ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनियों पर लागू वर्तमान निवेश दिशा निर्देशों से एनएलसी इंडिया लिमिटेड एनएलसीआईएल को विशेष छूट को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने हरित ऊर्जा क्षमता में 50% का लक्ष्य पार कर लिया है और भारत COP26 के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की राह पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना का प्रस्ताव पारित किया है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सराहना करता है जिनके अथक प्रयासों से यह उपलब्धि संभव हो पाई है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस सफल मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सहित भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान की महत्वाकांक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कृषि क्षेत्र में पिछड़े जिलों में फसल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि पिछले 11 वर्षों में वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 81,00,000 टन हो गया है। आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में फलों सब्जियों का वार्षिक उत्पादन बढ़कर 75,00,000 टन और दूध का उत्पादन बढ़कर 102,00,000 टन हो गया है।
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कृषि क्रांति पिछले 11 सालों में हुई है और हमारा उत्पादन खाद्यान्न के 40% से ज्यादा बढ़ा है। न केवल खाद्यान्न का, फलों का, सब्जियों का, दूध का उत्पादन ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है।
संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार दोनों सदनों के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आह्वान करेगी। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत बिहार में अब तक 88% से अधिक यानी 6,99,00,000 से अधिक गणना प्रपत्र जमा किए जा चुके हैं। आयोग ने कहा कि 1.59% मतदाता मृत पाए गए, 2.2% मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए और 4.53% मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। इसराइल के रक्षा बलों ने दमिश्क में सीरियाई सैन्य मुख्यालय पर हमले किए हैं। रूस नागरिकों को खतरे का हवाला दिया। पिछले 24 घंटों में इजरायली विमानों ने दक्षिणी सीरिया में स्वेदा की ओर जा रहे टैंकों, रॉकेट लॉन्चरों और सशस्त्र वाहनों को भी निशाना बनाया। इन हमलों में एक नागरिक की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड की 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में इंग्लैंड द्वारा दिए गए 259 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 25वें ओवर में 3 विकेट पर 113 रन बना लिए हैं। साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 258 रन बनाए। सोफिया डंकले ने सर्वाधिक 83 रन की पारी खेली। भारत के लिए स्नेह राणा और क्रांति गौड़ ने 2-2 विकेट लिए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।